नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉलीबॉल और भारत के विकास की गाथा के बीच समानता बताते हुए टीम वर्क, संतुलन और दृढ़ संकल्प को साझा सूत्र बताया। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी की। उन्होंने कहा, भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ा। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से इस वर्ष तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल चुनाव में भारी बहुमत से जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात फ्रांस और लग्जमबर्ग की यात्रा पर रवाना होंगे। भारत ने वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की। सभी संबंधित पक्षों से संवाद के माध्यम से मुद्दों का समाधान करने का आह्वान किया और मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में बहुत घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉलीबॉल और भारत के विकास की गाथा के बीच कई समानताएं बताते हुए टीम वर्क, संतुलन और दृढ़ संकल्प को साझा सूत्र बताया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ती है। वॉलीबॉल के हर खिलाड़ी का मंत्र होता है टीम फर्स्ट। हर कोई भले ही अलग अलग स्किल्स का हो, लेकिन सभी प्लेयर्स अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। और मैं तो भारत की डेवलपमेंट स्टोरी और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातें कॉमन देखता हूँ। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने खेल के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं।
स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025, इस प्रकार के प्रावधानों से सही टैलेंट को अवसर मिलेगा। खेल संगठनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश के युवाओं को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2025 में भारत का चावल उत्पादन 150 मिलियन टन से अधिक रहा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विकसित बेहतर गुणवत्ता वाली 25 फसलों की 184 नई किस्मों के उद्घाटन अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि भारत ने चावल उत्पादन के मामले में चीन को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गया है।
चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। हम नंबर वन बन गए। इस साल हमारा उत्पादन 150.18 मिलियन टन और चीन का 145.28 मिलियन टन। ये चीन को पीछे छोड़ना एक असाधारण उपलब्धि है। हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके हमने अन्न के भंडार भर दिए हैं। हम अब मांगने वाले नहीं, दुनिया को चावल देने वाले देश।
कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में बीजों की 3,200 से अधिक किस्में विकसित की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं का लाभ 3 वर्ष के भीतर देश भर के किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने पर कार्य कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा भ्रष्टाचार का एक पर्याय बन चुका था, जहां श्रमिकों को दरकिनार करके उनका शोषण किया जाता था। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी कानून श्रमिकों के हित में है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन देश भर के विधानसभा चुनावों में लगातार जीत हासिल कर रहा है और उम्मीद है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी यही सिलसिला बना रहेगा। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल वंशवादी शासन पर आधारित हैं और भ्रष्टाचार का पर्याय है, इसलिए राज्य की जनता को इसे नकार देना चाहिए।
हर मोर्चे पर डीएमके सरकार विफल गई है। सबसे करप्ट गवर्नमेंट अगर कहीं पर है वो तमिलनाडु में है। घोषणा पत्र का सबसे कम वादों को पूरा करने वाली कोई सरकार है तो डीएमके सरकार है। तमिलनाडु के माताओं बहनों की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। तमिलनाडु के अंदर अब ये परिवार की राजनीति को समाप्त करने का समय आ गया है।
श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नए श्रम कानूनों से पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों, तराई और डुआर्स क्षेत्र में चाय और सिंकोना मजदूरों के जीवन में बदलाव आएगा। चाय और सिंकोना श्रमिक संघों के नेताओं और हितधारकों के साथ बातचीत में पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने चाय और सिंकोना मजदूरों को सम्मानजनक मजदूरी और उनकी पुश्तैनी जमीन से वंचित रखा है, साथ ही उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि नए श्रम कानून से ये सुनिश्चित होगा कि किसी भी मजदूर को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान न किया जाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर फ्रांस और लग्जमबर्ग की 6 दिन की यात्रा पर आज रात रवाना होंगे। डॉक्टर जयशंकर पेरिस में फ्रांस के नेताओं से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री जियान नोएल बेरोट के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत हुई प्रगति तथा वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री लग्जमबर्ग में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल तथा अन्य नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। वे लग्जमबर्ग में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग मजबूत करने के कार्यक्रमों का ये एक हिस्सा है। जनरल द्विवेदी 2 दिन की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात में रहेंगे। भारत ने वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सभी संबंधित पक्षों से संवाद के माध्यम से मुद्दों का समाधान करने का भी आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत वेनेजुएला की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। भारत ने वेनेजुएला के लोगों के हितों और सुरक्षा के प्रति समर्थन भी व्यक्त किया। इस बीच विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी अनावश्यक यात्राओं से बचने का परामर्श जारी किया है। वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीयों को कराकस में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने आज उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स से कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने को कहा है। इस बीच विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो ने विपक्ष के उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने का आह्वान किया है। उधर अमेरिका में डेमोक्रेट सांसदों ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की है। कई मीडिया संस्थानों ने अमेरिका के इस कदम की वैधता पर सवाल उठाया है। इस बीच वॉशिंगटन, बोस्टन, लॉस एंजलिस, अटलांटा, शिकागो और मायामी सहित अमेरिका के कई बड़े शहरों में कल सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। ईरान में एक सप्ताह से जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान 16 लोगों की मौत हो गई। ईरान में बढ़ती कीमतों और आर्थिक कठिनाइयों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और पिछले 3 वर्ष में सबसे गंभीर आंतरिक चुनौती उत्पन्न हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने 50वीं बैठक के सफल आयोजन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में प्रगति की शुरुआत की थी। प्रगति ने प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष समीक्षा के माध्यम से प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं और जन शिकायतों की वास्तविक निगरानी तथा समाधान सक्षम बनाकर शासन व्यवस्था में क्रांति पैदा की है। ये मंच सहकारी संघवाद का एक आदर्श उदाहरण है। इसमें केंद्र, राज्य और केंद्रीय मंत्रालय एक ही डिजिटल इंटरफेस पर मौजूद हैं। 1 दशक से अधिक समय में प्रगति ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने, प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं में देरी के कारणों का समाधान करने और जिम्मेदारी की एक मजबूत संस्कृति को प्रोत्साहन देने में सहायता की है। ये निगरानी के साथ शासन सुधारों का मंच बन गया है। विशेष श्रृंखला में आज तेलंगाना में शीघ्र ही शुरू हो रहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबी नगर परियोजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के बीबीनगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जा रही है। इस परियोजना की शुरुआत जुलाई 2022 में हुई थी। पिछले साल 1 दिसंबर तक इसका लगभग 86% काम पूरा हो चुका है और इसे इस साल जून के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस परियोजना में काम बहुत तेजी से हुआ है। वर्ष 2022-23 में इसके काम की प्रगति केवल 8.6% थी, वहीं 2025-26 तक यह बढ़कर लगभग 86% हो गई है। 28 जून 2023 को प्रधानमंत्री ने प्रगति कार्यक्रम के तहत इस परियोजना की समीक्षा की, जिसके बाद इस परियोजना के काम में साफ तौर पर तेजी आई। 14 सितंबर 2023 तक काम 29% पूरा हुआ था, जो 2023-24 के अंत तक बढ़कर 57% हो गया। इससे यह साफ होता है कि प्रगति कार्यक्रम के तहत निगरानी और तेज फैसलों से काम में तेजी आई है। एम्स बीबीनगर की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी अहम समस्याओं का समाधान हुआ है।
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए। मेजर इशू था हाई पावर टेंशन वायर जो कि हमारे कैंपस के थ्रू जा रही थी, उसको चेंज करने का, वो भी हो गई। और एक था कि वाटर सप्लाई हमारे कैंपस में आए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने हमको जुलाई में दे दिया।
यह अस्पताल शुरू होने के बाद लगभग 3000 लोगों को सीधे रोजगार देगा, जिसमें डॉक्टर, शिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। इसके शुरू होने से क्षेत्र में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल शिक्षा और रोजगार को बड़ी मजबूती मिलेगी। आनंद कुमार के साथ मैं अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत में भी कल घना कोहरा रहेगा। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में ठंड रहेगी। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में टाइफाइड से निपटने के लिए राज्य प्रशासन से युद्ध स्तर पर काम करने को कहा है। गृहमंत्री ने राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने टाइफाइड से प्रभावित 113 मरीजों का विशेषज्ञ चिकित्सकों से शीघ्र इलाज कराने का निर्देश दिया है। गांधीनगर के कई इलाकों में टाइफाइड फैला है और ये पाइपलाइन में लीकेज के कारण दूषित पानी की आपूर्ति से जुड़ा है। केरल के विधायक और पूर्व मंत्री एंटनी राजू की सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए जाने के कारण विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी। न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने पर विधानसभा सचिवालय औपचारिक अधिसूचना जारी करेगा। नेदू मंगड़ अदालत ने कल एंटनी राजू को 3 साल कैद की सजा सुनाई। उन पर अगले 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया है। इस बीच अदालत ने उनकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक उन्हें जमानत दे दी है। महान आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती पर आज विश्व ब्रेल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार गंगतोक से नेपाली भाषा में आज विशेष ब्रेल समाचार बुलेटिन प्रसारित किया गया। इसे दिव्यांग सोनम डिकी घुटिया ने पढ़ा। दिव्यांग जनों के सम्मान में पहली बार आकाशवाणी गंगतोक से ये प्रसारण किया गया। इधर नई दिल्ली में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड्स ने मोर ब्रेल मोर एम्पावरमेंट नामक से एक संयुक्त ब्रेल अभियान भी शुरू किया। संस्था के महासचिव एसके रोंगटा ने कहा कि ब्रेल दृष्टिबाधित लोगों को समाज में शामिल करने में सहायता करता है।
आज हमने एक नई शुरुआत ग्लोबल ज्वाइंट कैंपेन की है ICEVI के साथ मिलकर ब्रेल के प्रचार प्रसार और ब्रेल को सुलभ बनाने के लिए। जो लोग ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी ब्रेल का स्थान ले सकती है, उसको चुनौती देने के लिए और उसको ठीक करने के लिए इस रवैये को ब्रेल को दृष्टिबाधितों की शिक्षा का माध्यम, डेवलाइन की शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा, उसके लिए हमारा ये कैंपेन आगे बढ़ेगा और इसको अनिवार्यता दिलाने के लिए हर कंट्री में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉलीबॉल और भारत के विकास की गाथा के बीच समानता बताते हुए टीमवर्क, संतुलन और दृढ़ संकल्प को साझा सूत्र बताया। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी की। उन्होंने कहा, भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ा। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से इस वर्ष तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल चुनाव में भारी बहुमत से जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात फ्रांस और लग्जमबर्ग की यात्रा पर रवाना होंगे। भारत ने वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की और मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में बहुत घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।